ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री बहादुर सिंह लामा द्वारा पद से इस्तीफे की घोषणा। संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली को न मानने वाले संसद को अवरोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान। बहुविवाह को छूट देने वाला कानून बनाया जा रहा है, ये दावा भ्रम मात्र है, कानून मंत्री अजय कुमार चौरसिया द्वारा स्पष्ट। और भारत के उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए एक हादसे में हुई 11 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन न करने वाले लोग संसद में बाधा डाल रहे हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ द्वारा लिखित पुस्तक लोकतंत्र और जनमत नेपाल के चुनावी इतिहास के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने प्रतिनिधि सभा की बैठकों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी द्वारा लगातार की जा रही बाधा और बहिष्कार की ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान और कानून के दायरे में रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की स्थिति में भी व्यवस्था के भीतर घुसकर व्यवस्था के खिलाफ आग लगाने की कोशिश करने की प्रवृत्ति गलत है। प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के चुनाव प्रणाली को खर्चीला बताते हुए और उम्मीदवारों द्वारा सीमा से अधिक खर्च करने के संदर्भ में वक्ताओं द्वारा की गई टिप्पणी का प्रतिवाद करते हुए स्पष्ट किया कि उनके अनुभव में ऐसा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज 11:55 बजे तुर्कमेनिस्तान के अवाजा शहर में आयोजित होने वाले भू परिवेष्ठित विकासशील देशों एलडीसी के तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए रवाना हो रहे हैं। ये सम्मेलन 20 से 23 सावन तक आयोजित किया जा रहा है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के औपचारिक निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ओली इस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। प्रधानमंत्री ओली सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करने के साथ साथ अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में भी संबोधन करेंगे। नेपाल वर्तमान में एलडीसी समूह का अध्यक्ष भी है। प्रधानमंत्री ओली 23 श्रावण शुक्रवार की रात को नेपाल वापस लौटने वाले हैं। नेकपा माओवादी केंद्र की स्थायी समिति की बैठक में आज विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पेरिस डांडा में आयोजित बैठक में नेताओं ने कहा कि विश्व राजनीति और कूटनीति में नेपाल की उपस्थिति कमजोर होती जा रही है। बैठक के बाद माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा ने की जानकारी दी। बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया कि नेपाल की कूटनीतिक क्षमता को विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेपाल की छवि को मजबूत करने के लिए दृढ़ नेतृत्व का विकास आवश्यक है। प्रवक्ता सापकोटा ने बताया कि बैठक में नेताओं ने कहा कि नेपाल के पड़ोसी देश चीन, भारत और रूस जैसे देश विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ निष्प्रभावी होता जा रहा है। ऐसे में नेपाल की भूमिका को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा आज की बैठक में पार्टी नेताओं ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए देश के कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान प्रविधि के विकास के लिए पार्टी को प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने बहुविवाह को छूट देने वाला कानून बनाए जाने की बात को केवल एक भ्रम बताया है। कानून मंत्रालय में आज नेपाल महिला संघ के साथ हुई बैठक में मंत्री चौरसिया ने बहुविवाह को छूट देने वाले प्रस्तावित कानून की बात को गलत और भ्रामक बताया। संघ की अध्यक्ष उषा रावत मिश्र ने बहुविवाह को छूट देने वाला प्रस्तावित कानून बनाए जाने की तैयारी होने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। मुल्की दीवानी संहिता 2074 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी विवाहित पुरुष विवाहित संबंध बने रहने की स्थिति में दूसरा विवाह नहीं कर सकता और ऐसा विवाह स्वतः ही रद्द हो जाएगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री बहादुर सिंह लामा तामांग ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हेटौड़ा स्थित मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वो कल प्रदेश प्रमुख से मिलकर अपना इस्तीफा पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री लामा ने प्रदेश सुशासन हॉल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान हुई प्रगति का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने 2081 साल श्रावण 9 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 1 साल 9 दिन तक सरकार का नेतृत्व करने के बाद आज उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी बीच प्रदेश प्रमुख द्वारा नए मुख्यमंत्री के लिए आवेदन आमंत्रित करने के बाद नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दल के नेता इंद्र बानिया ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे। संघीय निजामती सेवा विधेयक की रिपोर्ट में हुई त्रुटि की जांच कर रही विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट कल प्रतिनिधि सभा में पेश करने की तैयारी की है। समिति के अध्यक्ष जीवन परियार ने बताया कि समिति को मिली जिम्मेदारी और कार्यादेश पर ध्यान केंद्रित कर जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का काम पूरा कर लिया गया है, इसलिए इसे कल को सभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्ययन के दौरान ये पता लगाया गया है कि त्रुटि कैसे हुई, इसके क्या कारण थे और रिपोर्ट लेखन कैसे आगे बढ़ा था। इसके लिए राज्य व्यवस्था समिति और उप समिति में हुई प्रक्रियाओं का समग्र अध्ययन कर रिपोर्ट में तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि स्वर्गीय पृथ्वीमान गुरुङ ने पार्टी के लिए त्याग, समर्पण और बलिदान दिया था। गुरुङ की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नेपाली कांग्रेस चितवन द्वारा आज गुरुङ के निवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभापति देउवा ने कहा कि गुरुङ एक निष्ठावान नेता थे। गण्डकी प्रदेश के पूर्व प्रमुख एवं नेपाली कांग्रेस चितवन के पूर्व अध्यक्ष गुरुङ में क्रांतिकारी भावना थी। सभापति देउवा ने कहा कि गुरुङ द्वारा छोड़े गए कामों को सभी को मिलकर पूरा करना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए एक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोगों को बचा लिया गया है। ये हादसा इटिया थोक के बेलवा बोहता रहता पुल पर हुआ जहां एसयूवी कार नहर में पलट गई। इथिया थोक पुलिस थाने के एसएचओ कृष्णराज राय ने बीबीसी हिंदी को बताया कि एसयूवी कार में ड्राइवर समेत 15 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है, साथ ही उन्होंने कहा कि मृतकों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है और घायलों को उचित इलाज कराने के लिए कहा गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री बहादुर सिंह लामा द्वारा पद से इस्तीफे की घोषणा संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली को न मानने वाले संसद को अवरोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान, बहुविवाह को छूट देने वाला कानून बनाया जा रहा है, ये दावा भ्रम मात्र है। कानून मंत्री अजय कुमार चौरसिया द्वारा स्पष्ट। और भारत के उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए एक हादसे में 11 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।